الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورہ نجم کی یہ آخری آیات ہیں جن کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے صحف ابراہیم و موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو کافر ہے اس کے پاس کیا یہ خبریں نہیں پہنچیں جو کہ ان صحیفوں کے اندر بھی موجود تھیں وہ خبریں کیا تھیں تو ان کے بارے میں تفسیر میں کیا لکھا ہے کہ ان میں سے دو جو تھے نا وہ تو احکام تھے ٹھیک ہے اور باقی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں وغیرہ تھیں تو احکام تو یہ تھے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى ولیس للانسان الا ما سعى یہ دونوں احکامات ہو گئے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ عبرت و نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت وہ ان دونوں کے بعد شروع ہو جاتی ہیں تو ہم یہی پڑھ رہے تھے کہ ان سعیہ سوف یرا کہ بے شک ہر شخص کی جو محنت ہوگی تو وہ اس کی حقیقت اس کو دکھلا دی جائے گی کہ اصل میں اس نے کیا کیا ہے نیت اس کی کیا تھی ان محنتوں کے اندر وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَىٰ اور بے شک تیرے رب کی طرف ہی انتہا ہے یعنی فائنل ڈیسٹینیشن اللہ تعالیٰ تک ہی ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ اور بے شک وہی ہے جو ہساتا ہے اور رلاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ اور بے شک وہی ہے جو کہ کسی کو مالدار کرتا ہے اور اس کے رزق کی حفاظت کرتا ہے یعنی ریزرو کر کے رکھتا ہے اس کے رزق کو وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ اور بے شک وہی ہے جو کہ شعرا ستارے کا بھی رب ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى اور بے شک وہی ہے کہ جس نے عاد اولا کو بھی ہلاک کیا اور پھر سمود کو بھی ہلاک کیا کہ ان میں سے کچھ بھی نہ بچا فما ابقا کہ یہ پھر باقی نہیں رہے اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ٹھیک ہے کہ یہ جو مؤتفقات تھیں تو ان کو بھی اس نے جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پلٹ دیا ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں کہ مؤتفقہ کے لفظی معنی مؤتلفہ کے ہیں یہ چند یعنی جن کو تلف کر دیا گیا ہو جیسے کہتے ہیں اردو کے اندر بھی کسی چیز کو آپ نے تلف کر دیا ختم کر دیا حذف کر دیا ٹائپ کی یہی مفہوم تقریباً بنتا ہے تو یہ چند بستیاں اور شہر متصل تھے حضرت لوط علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے ٹھیک ہے یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی عراق سے عراق میں رہتے تھے نا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اور وہاں پر نمرود کے خلاف انہوں نے پھر دعوت دینی شروع کری تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا تو انہوں نے نمرود کو بھی توحید کی طرف بلایا اور سب کو تو پھر ان کو اس کے بدلے میں آگ میں ڈالا گیا تو جب آگ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما دی نا تو اس معجزے کو دیکھ کر کے بھی کوئی مسلمان نہیں ہوا ذرا تصور تو کریں نا ہم کہ ایک بندے کو آپ کے سامنے آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ وہاں سے زندہ سلامت نکل آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا اس کو ہے نا
لیکن پھر بھی کوئی مسلمان نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو جو کفر کے اندر اتنے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں نا, تو ان کے سامنے پھر یہ معجزات جو ہیں پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. ان کے اوپر ایمان لانے والے صرف دو انسان تھے, ایک ان کی بیوی سارا اور دوسری ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام. ٹھیک ہے, تو اب یہ جب یہاں سے ایسا معاملہ ہو گیا کہ بس اب تو انہوں نے ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا, تو پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے وہاں سے ہجرت کری اور عراق سے ہجرت کر کے یہ گئے مغرب کی سمت میں. مغرب کی سمت میں کون سا ملک ہے؟ شام کا ملک ہے. ٹھیک ہے, یہ شام جو ہے نا یہ پورا کا پورا علاقہ ہے عراق سے مغرب کی طرف, ویسٹ کی طرف. اس کے اندر جو موجودہ سیریا ہے وہ بھی شامل ہے, ترکی کا جو جنوبی حصہ ہے وہ بھی شام ہی کہلاتا ہے, اور فلسطین بھی شام میں ہی داخل ہے, اردن کا ملک جارڈن جو آج کہلاتا ہے وہ بھی شام کا حصہ ہے. تو یہ سارے کے ساری یہ سرزمین شام کہلاتی ہے. اس سرزمین شام میں ایک چھوٹا سا سمندر ہے, یا سمندر ایکچولی ہے بھی نہیں, وہ تو بس لیک ہی کہیں گے اس کو, جس کو کہ ڈیڈ سی کہا جاتا ہے اب. ٹھیک ہے, تو کیا کہتے ہیں اس کو, بحیرہ موتا کہتے ہیں نا, ڈیڈ سی. ٹھیک ہے, تو اس کے گرد جو ہے نا وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی بہت ساری بستیاں آباد تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ جو بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں نا, یہ ان بستیوں میں چلے جائیں اور وہاں پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور ان کی جو برائیاں ہیں ان سے ان کو روکیں. تو لوط علیہ السلام جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ پیغمبر اپوائنٹ ہوئے ان بستیوں کی طرف. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگے چلے گئے, یعنی فلسطین کے سرزمین میں چلے گئے, اور پھر وہاں سے مزید پھر دعوت و تبلیغ کی نیت سے وہاں سے آگے نکلے اور مصر گئے, اور مصر میں پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کری, اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ ناکام رہا. پھر وہ ایمان لے کر کے آیا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر, اور اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حوالے کر دی کہ آپ میری بیٹی کو لے جائیں, یہ آپ کے پاس رہے گی, آپ کی خادمہ بن کر کے رہے گی. ٹھیک ہے, پھر وہ سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے کو ہبا کر دیا کہ میری طرف سے یہ آپ ان کو رکھیں, اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے شادی کر لی, اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ان کے بطن سے. ٹھیک ہے, بہرحال لوط علیہ السلام ان بستیوں میں رک گئے اور وہاں پر انہوں نے پھر تبلیغ کا کام شروع کیا. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ اس بستی کے اندر بہت, یعنی ایک تو وہ بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے, اور دوسرا ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ یہ ہم جنس پرست لوگ تھے, ہوموسیکچوئل جن کو کہتے ہیں. اور پھر وہ سارا واقعہ ہوا کہ ان کی بات انہوں نے نہیں مانی, بالآخر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے جو کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے, اور یہ دونوں پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے ان کے گھر میں, اور وہاں پہ جا کر کے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی, اور پھر وہاں سے نکل کر کے یہ لوط علیہ السلام کی بستیوں میں گئے, اور وہاں پر پھر انہوں نے ان کو زمین سے اکھیڑ کر کے جو ہے نا وہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اونچائی تک لے کے گئے, اور پھر ان کو نیچے پلٹ, یعنی بالکل زمین کے اوپر پلٹ دیا. ٹھیک ہے, تو انہی بستیوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ یہ چند بستیاں اور شہر متصل تھے, یعنی ایک ختم ہوتا تھا تھوڑا سا دیر کے بعد دوسرے شروع ہو جاتا تھا, اس کے بعد تیسرا شروع ہو جاتا تھا. حضرت لوط علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے, نافرمانی اور بے حیائی کے اعمال کی سزا میں ان کی بستیاں جبرائیل امین نے الٹ دیں. جب جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا نا, تو کیا ہوا, اتنی گہر یعنی اتنا ڈیپ اکھیڑا کہ زمین میں سے پانی نکل آیا. ٹھیک ہے, زمین کے اندر واٹر ریزروائرز ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے نا پانی کے ذخیرے ہوتے ہیں, جیسے کہ پانی کے بیگز ہیں, واٹر بیگز جو کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب ان میں سے اگر کوئی واٹر بیگ جو ہے وہ رپچر ہو جاتا ہے, یعنی اس میں کوئی سوراخ بن جاتا ہے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس واٹر بیگ کے اندر سے پھر پانی اوپر کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہی کنواں بن جاتا ہے. کنویں کا بھی تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا, کنویں میں آپ گڈھا کھودتے ہیں, حتیٰ کہ आप किसी वाटर रिजर्वॉयर को जाकर के हिट कर जाते हैं और फिर उस वाटर रिजर्वॉयर में ना आप एक सुराख कर देते हैं, उस सुराख से जो है वो पानी रसना शुरू हो जाता है और उस कुएं के अंदर आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से कुएं बनते हैं। अब अगर ये कुआं जो है वो कोई बहुत बड़ा सा कुआं हो तो फिर क्या होता है कि पूरा का पूरा नीचे से वाटर रिजर्वॉयर जो है ना वो गोया के एक एक लेक की शक्ल में बाहर निकल आता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये लूत अलैहिस्सलाम ये जो डेड सी है ना, ये लगता है, हमें हतमी तौर पर नहीं पता लेकिन लगता है कि ये उसी यानी अजाब का नतीजा बना। पहले ये चीज वहां पर नहीं होगी, पहले तो यहां पर बस्तियां थी लेकिन जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से उनको उखाड़ा जमीन में से तो फिर पानी नीचे से निकल आया और इसने पूरी एक बाकायदा बुहिरा की यानी छोटे समंदर की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर इसको ऊपर लेकर के गए जो ना इब्राहिम जिब्रील अलैहिस्सलाम जो पूरी बस्तियों को गोया के अपने हाथ में लेकर के ऊपर गए और फिर उनको जो है ना पलट करके जमीन पर दे मारा। अब ये जो बस्तियां नीचे आई हैं तो ये आकर के गिरी किधर है, ये गिरी है उसी डेड सी के अंदर, ठीक है ना, यानी जहां से उनको उखाड़ा था वहीं पे गोया के वापस। ये ऐसे ही है जैसे कि आपने कोई जैसे पुडिंग बनाते हैं ना, तो पुडिंग जो है ना वो आप लोगों को तो माशाल्लाह ज्यादा पता है इन सब बातों का कि कभी ऐसा होता है कि नीचे से जो है ना वो जमी नहीं होती है, तो नीचे से तो लिक्विड होती है लेकिन ऊपर उसकी एक क्रस्ट जम जाती है, ठीक है ना। तो जो क्रस्ट उसकी जम जाती है ना, तो अगर आप कोई बड़ा सा चमचा लें और उस चमचे से जो है ना वो उस पुडिंग को उस चमचे के अंदर भरें और फिर चमचे को ऊपर लेकर के चली जाएं, ठीक है, तो नीचे क्या होगा कि जहां से आपने वो चमचे से पुडिंग को निकाला है ना, तो वहां पर जो नीचे से जो पुडिंग का लिक्विड हिस्सा था वो ऊपर आ जाएगा, है ना। फिर अब आप क्या करें कि चमचे से उसको ऊपर लेकर के जाएं, क्रस्ट वाले हिस्से को ऊपर लेकर के जाएं और पलट करके उसको नीचे फेंक दें, तो क्या होगा कि ऊपर से जो क्रस्ट है जो नीचे गिरेगा ना, तो वो फिर चकनाचूर होकर के उस लिक्विड के अंदर चला जाएगा। बिल्कुल यही मामला जो है लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियों का लगता है कि अब जो है ना उस डेड सी के अंदर जो है ना इन बस्तियों के जो है ना वो बाकियात मौजूद हैं। अब उसमें क्या अल्लाह ताला की हिकमत हुई कि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी शामिल हो गए जिसकी वजह से कि वहां का जो पानी है वो इंतहाई डेंस है, उसकी डेंसिटी इंतहाई ज्यादा है, इतना वो थिक पानी है कि अगर कोई शख्स जाकर के वहां पर लेट जाए ना उस पानी के ऊपर तो वो पानी के अंदर सिंक नहीं होता, वो नीचे डूबता नहीं है बल्कि वो ऊपर ही तैरता रहेगा बगैर किसी कश्ती के, ठीक है। और उसके अंदर बाकायदा उन बस्तियों के आसार भी नजर आते हैं, ठीक है। बहरहाल ये तो कुछ बातें हो गई मुतफिकात के बारे में यानी उन बस्तियों के बारे में। किसी ने यहाँ पर क्या लिखा है कि हम गए थे, लगता है बहुत गहरा पानी है और बे इंतहा कड़वा भी। हाँ कड़वा तो इस वजह से है ना क्योंकि उसके अंदर बे यानी सॉल्ट्स बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है। कोई लहर भी नहीं है, हाँ कोई लहर कहाँ से आएगी उसके अंदर, लेकिन चूंकि वो एक अजाब वाली जगह है तो इस वजह से ना वहां पे जाना पसंद नहीं फरमाया गया ऐसी जगहों के ऊपर, ठीक है। अगर मजबूरन जाना पड़ जाए जैसे सफर के अंदर रास्ते में कोई ऐसी जगह पड़ती हो ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां से फिर जल्दी से गुजर जाओ, ठीक है ना, इस्तिगफार करते हुए अल्लाह ताला से पनाह मांगते हुए और गुजर जाओ वहां से, ठीक है। हाँ अगर मालूम नहीं था उस वक्त ये बात तो फिर गलती हो गई, उसके ऊपर अल्लाह ताला से माफी मांग लेनी चाहिए। फगशाह मागशा, अच्छा एक और बात भी जरूरी याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ना आजमाते हैं अपने बंदों को ना, इस दुनिया के अंदर आजमाइश के लिए भेजा गया है ना, यहाँ पे लड्डू खाने के लिए तो नहीं भेजा गया है ना, तो आजमाइश के लिए भेजा गया है। तो फिर आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ऐसे हालात भी बनाते हैं कि जिसके अंदर आपको आजमाया जा सके। तो अल्लाह ताला की हिकमत क्या है कि वो जो पानी है ना डेड सी का, उस पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स में अल्लाह ताला ने बहुत सारी शिफा रख दी जिस्मानी बीमारियों की, ठीक है, खुसूसन जिल्द की बीमारियों के लिए उसके अंदर बड़ी शिफा है। अब वहां पे लोग जाते हैं और बाकायदा वहां से पानी लेकर के भी आते हैं और वहां पे जो तैरते हैं तो वो भी इसीलिए ताकि उनकी स्किन डिजीजेस जो हैं वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या हुक्म फरमाया, मत जाओ वहां पर, अब ये एक आजमाइश बन गई, एक तरफ आपको पता लग रहा है कि वहां जाएंगे तो बीमारियां दूर हो जाएंगी और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वही शख्स मानेगा जो कि अल्लाह के हुक्म को ज्यादा अहमियत देता होगा अपनी सेहत से, ठीक है ना। तो ये तो आजमाइश है। अब चले हम जो है वो डेड सी तक नहीं जाते, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो मौका नहीं मिल रहा वहां जाने का, लेकिन हमारे घर के अंदर इस तरह की आजमाइशें आती हैं ना कि जी अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगी, ठीक है ना। तो अब जो है वो सोने की अहमियत ज्यादा हो गई ताकि मैं बीमार ना हो और फर्ज नमाज कजा कर बैठी है ना, फर्ज नमाज कजा हो रही है लेकिन बीमारी के खौफ से नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बात तो वही हो गई ना। फिर तो चीजों की अहमियत जब हमारे जहन में पैदा हो जाती है तो फिर उसके बाद हम अपने अमाल को उनके मुताबिक कर लेते हैं, और जब चीजों की अहमियत नहीं होती है तो फिर हम अपने अमाल को उनके मुताबिक नहीं करते। फगशाह मा गशा, यानी ढांप लिया उन बस्तियों को जिस चीज ने ढांप लिया, ठीक है। गशा या गुशू का मतलब होता है ढांप लेना, जैसे कि किसी के ऊपर गशी तारी हो जाती है, उर्दू में कहते हैं ना, तो गशी तारी हो जाती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेहोशी ने उस शख्स को ढांप लिया, उसकी अकल को कवर कर लिया, उसके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो छुप गई, तो वो शख्स बेहोश हो गया, ठीक है ना। इसी को तो बेहोश होना कहते हैं। तो इस वजह से गशी का लफ्ज उर्दू में भी अडॉप्ट हो गया बेहोशी के लिए, ठीक है, क्योंकि ढांप लेना का मतलब होता है इसका असल में। तो यानी ढांप लिया उन बस्तियों को जिस चीज ने ढांप लिया, मुराद वो पथराव है जो बस्तियां उलटने के बाद उन पर किया गया। अब चाहे वो अलग से पत्थर उठा उठा के उनको मारा गया, जो भी चाहे उस तरह से किया गया हो, या ये कि जब उस बस्ती को उल्टा किया होगा तो भाई ऊपर की तरफ क्या था, घर वगैरह थे, और नीचे की तरफ क्या होता है, जमीन के नीचे क्या होता है, पत्थर होते हैं। तो जब आप उलट करके नीचे फेंकेंगे तो जो पत्थर नीचे की तरफ थे अब वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और ऊपर से फिर वो जो है वो नीचे बरसेंगे ना, ठीक है। तो क्या सूरत हुई होगी, हम तो इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या हुआ होगा उस दोनों के साथ ना। यहां तक सुहफ मूसा व इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो तालीमात बयान करनी थी वो खत्म हो गई। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फबी अय्य आलाई रब्बिका ततमारा, ठीक है, फबी अय्य आलाई, ये और कहां पे इस्तेमाल होता है, 31 मरतबा सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला यही अल्फाज इस्तेमाल फरमाते हैं ना, फबी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, ठीक है। तो आला जो है ना ये लफ्ज नेमतों के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर फबी अय्य आलाई के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बिका, यानी तुम्हारा रब, सिर्फ वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया, तेरा रब, वहां पर रब्बिकुमा है, तुम दोनों का रब, क्योंकि वहां पर सूरह रहमान में अल्लाह ताला जिन्नों और इंसानों दोनों से मुखातिब है, दोनों जिन्स, जिन और इंसान की जिन्स से मुखातिब है। तो फरमाया रब्बिकुमा, क्योंकि कुमा जो है वो सेकंड पर्सन ड्यूअल के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि यहां पर रब्बिका, तेरे रब की कौन कौन सी नेमतें, ततमारा, तुम मुखालिफत करोगे, तुम झगड़ा करोगे, मारा या मारा, मारा या मारा का मतलब होता है मतलब झगड़ा करना, जिसको हम उर्दू में मारा मारी भी कह सकते हैं, एनीवे अरबी का तो ये है ततमारा। तो ततमारा के फरमा रहे हैं कि मानी झगड़ा और मुखालिफत करना है, यानी बहस मुबाहसा और जदल और खामखा की जो एक होती है ना फजूल में आर्गुमेंटेशन करना, ठीक है, ये एक बड़ी बड़ी बुरी आदत होती है जो कि कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा मुशाहिदा ये रहा है कि ये एक एक बीमारी है, ठीक है, जो कि कभी कभी कुछ खानदानों में होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे के पूरे ना एक एक तरह के कल्चर के अंदर ये बीमारी होती है, झगड़ा करने की बीमारी, ठीक है ना, यानी एक पूरी नस्ल के अंदर ये बीमारी हो सकती है। ये जो रूहानी बीमारियां होती हैं ना, ये जिस तरह से जिस्मानी बीमारियां फैलती हैं, एक घर के एक फर्द को जिस्मानी बीमारी हो जाए कोई वाली, ठीक है ना, तो अब वो जिस्मानी बीमारी अगर फैलने वाली बीमारी हो, प्लेग टाइप की चीज हो, तो वो फिर घर के सारे अफराद को लगती है ना। जैसे कोरोना वायरस आजकल मशहूर हुआ है, ठीक है ना, हकीकत में लगता है नहीं लगता, ये तो अल्लाह अल्लाह बेहतर जानते हैं और अकल वाले समझते हैं इस बात को कि भाई ऐसा होता तो हो तो कोई नहीं रहा, शोर बहुत है इसके ऊपर। बहरहाल एनीवे, जिस्मानी बीमारियां लगती हैं, ठीक है ना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से रूहानी बीमारियां जो है ना, ये भी कंटेजियस होती हैं। कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब होता है फैलने वाली, ठीक है। तो अब रूहानी बीमारियों का हाल भी यही होता है कि पूरे पूरे खानदान किसी एक रूहानी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, पूरे पूरे खानदान, ठीक है। अब जाहिर है खानदान फिर आगे बढ़ते हैं, उनकी औलादें होती हैं, फिर वो और बड़ा खानदान होता है, फिर वो खानदान और बड़ा होता है, फिर वो खानदान और बड़ा होता है। तो फिर वो जो रूहानी बीमारी एक खानदान में पैदा हो गई थी ना, अब वो फैलती है उस खानदान में, हर बंदे के अंदर वो रूहानी बीमारी दाखिल हो रही है, दाखिल हो रही है, दाखिल हो रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, ऐसा लगता है कि गोया कि पूरे के पूरे इलाके में जहां पर वो खानदान बसता है, पूरे इलाके के लोग जो है वो उस रूहानी बीमारी का शिकार है, ठीक है ना। जैसे अगर थोड़ा सा हम नजरें खोल करके गौर करके मुशाहिदा करें इस बात का, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे मुल्क के अंदर भी किसी खास इलाके के रहने वाले जो हैं वो आपको शहवत की रूहानी बीमारी में ज्यादा मुब्तला नजर आएंगे। शहवत की रूहानी बीमारी बहुत ज्यादा आपको उस पूरे इलाके के लोगों में नजर आएगी, ठीक है भाई। कैसे आ गई ये शहवत की रूहानी बीमारी तमाम लोगों में उस इलाके के, या अक्सर, तमाम से मुराद अक्सर होता है, ठीक है भाई। इसी वजह से, क्योंकि रूहानी बीमारी एक्चुअली फैल रही होती है, ये बाप से बेटे में मुंतकिल हो रही होती है, ये माँ से बच्चों में मुंतकिल हो रही होती है रूहानी बीमारी, ठीक है। उसी तरीके से किसी और इलाके में आप जरा गौर से मुशाहिदा करें, बहुत यानी इसको कहते हैं डीपली, अगर आप तजिया करें तो आपको लगेगा कि उस इलाके के लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है, राइट। तकरीबन हर बंदे में आपको गुस्सा गालिब नजर आएगा, ठीक है ना। तो भाई गुस्सा एक रूहानी बीमारी है। किसी जगह के लोगों में आपको तकब्बुर गालिब नजर आएगा, वहां का हर बंदा अपने आप को अफलातून समझता है, हर बंदा अपने आप को जो है ना वो ऊंचा समझता है, या आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा किसी इलाके के लोगों के अंदर। हत्ता कि जब ये कहीं आगे माइग्रेट होकर किसी और जगह चले जाते हैं तो ये अपनी रूहानी बीमारी साथ लेकर के जाते हैं उस जगह के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी जो है ना, आर्ग्यूमेंटेशन करना, खामखा की आर्ग्यूमेंटेशन करना, ये भी असल में एक रूहानी बीमारी की वजह से ही होता है, इस किस्म का एटीट्यूड, ठीक है ना। ये इसके पीछे तकब्बुर भी, तकब्बुर की रूहानी बीमारी भी शामिल है और उजुब की रूहानी बीमारी भी शामिल है, ठीक है। तकब्बुर का मतलब होता है कि अपने आप को सही समझना दूसरों के मुकाबले में, अपने आप को बेहतर समझना दूसरों के मुकाबले में, और उजुब का मतलब भी तकरीबन ऐसा ही होता है, लेकिन उजुब का मतलब ये होता है कि दूसरे के मुकाबले में नहीं, बस अपने अपने आप के अंदर ही अपने आप को सही समझना। जैसे कहते हैं ना, अपने ख्यालात में ही, अपने तसव्वुरात में ही अपने आप से मोहब्बत कर रहा है इंसान, है ना, इसको कहते हैं उजुब, ठीक है। तो जिस शख्स के अंदर उजुब और तकब्बुर वाली रूहानी बीमारियां होती हैं ना, अब ये जो है ना बिला वजह का अगले बंदे से झगड़ा करेगा, आर्ग्यूमेंटेशन करेगा, हर बात के ऊपर कोई ना कोई मीन मीख निकालेगा, कोई ना कोई जो है ना वो उसको निगेट करेगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। चाहे इसको उस मजमून का पता हो या इसको उस मजमून का पता नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसने बस आर्ग्यूमेंटेशन करनी है, ठीक है ना। इसने अगले बंदे को जो है ना वो चैलेंज करना है। मिसाल के तौर पर दो लोग हैं, ठीक है, एक बंदा जो है वो बहुत ताकतवर है, बहुत उसके ना बॉडी जो है ना बड़ी जबरदस्त, यानी मजबूत बॉडी है उसकी, बड़ा उसके पास फिजिकल माइट है, ठीक है ना। अब वो शख्स जो है वो दूसरे बंदे को कह रहा है कि भाई मेरे पास ताकत है, ठीक है ना, मैं जरा बहुत ही पहलवान किस्म का आदमी हूँ, मेरे पास ताकत है, मेरे पास है, तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये बंदा जो है ना ये कहलाएगा कि भाई इसके अंदर तकब्बुर है, ये अपनी ताकत के ऊपर बहुत घमंड कर रहा है ना, तकब्बुर कर रहा है अपनी ताकत के ऊपर। लेकिन जो अगला बंदा है ना, अगला बंदा जो है उसके पास कोई ताकत नहीं है, वो बेचारा कांकड़ी पहलवान है ना, सूखा कांकड़ किस्म का ऐसे ही है, ठीक ना, कमजोर सा। लेकिन इसकी बात सुन करके वो कहे तो क्या हो गया, तुम्हारे पास ताकत है, मेरे पास भी ताकत है भाई, ठीक है ना। अब ये भी जो है ना वो अपने जिस तरह कहते हैं ना हाथ से, वो हाथ यूं करके मसल्स दिखाते हैं, ठीक है ना। अब ये काकड़ी पहलवान साहब जो हैं ये भी अपने मसल्स दिखाने की कोशिश करना शुरू कर दें, और पहलवान जो हकीकी पहलवान है उसको चैलेंज करना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो अब ऐसे शख्स को क्या कहा जाएगा, इस शख्स को फिर ना यानी इंतहाई बेवकूफ कहा जाएगा ना भाई। अगला बंदा जो के वाकई पहलवान है तो उसके पास तो ताकत है, वो तो तगड़ा बंदा है, वो अगर तकब्बुर कर रहा है तो किसी बुनियाद के ऊपर तकब्बुर कर रहा है ना। तुम किस बात के ऊपर, तुम किस बात के ऊपर बहस कर रहे हो, तुम्हारे पास तो ताकत है ही नहीं, है ना, तुम तो हड्डी के ढांचे हो, तुम किस बात के ऊपर ये चैलेंज कर रहे हो उसको, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक। लेकिन वो जो कर रहा है ना चैलेंज, वो बस उसको आदत है चैलेंज करने की, उसको आदत है आर्ग्यूमेंट करने की, इस वजह से वो कर रहा है। जिस तरीके से फिजिकल ताकत में ऐसा मामला हो सकता है ना कि किसी के पास वाकई है तो वो उसको उसका इजहार कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास नहीं है लेकिन फिर भी वो इजहार कर रहे हैं। यही मामला जो है वो इल्म के इल्म में भी होता है। किसी शख्स के पास बहुत ज्यादा इल्म है, अब वो उस इल्म के ऊपर घुमंड कर रहा है ना, उस इल्म के ऊपर तकब्बुर कर रहा है, तो भाई कम अज कम इतना तो कह सकते हैं ना कि भाई है इसके पास इल्म, इसको घुमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर भी रहा है तो कम अज कम है तो ना इसके पास, इसने हजारों किताबें पढ़ी हुई हैं, इसने डिग्रियां हासिल करी हुई हैं, इसके पास बड़ा तजुर्बा है, इसने बड़ी चीजों को सीखा है, इसने लोगों को सिखाया है, तो है इसके पास इल्म, ये इल्म के होते हुए उसके ऊपर तकब्बुर कर रहा है। लेकिन अगला बंदा जिसको कि कुछ भी नहीं आता, ना तो उसने किताबें पढ़ी हैं, ना उसने किसी टीचर से सीखा है, ना उसने कोई तजुर्बा हासिल किया है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उठा के आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दे, तुम्हारे पास इल्म है तो क्या हो, मेरे पास भी इल्म है, मैं भी जानता हूं, मैं भी तुम्हारे साथ बहस कर सकता हूं, तो इस शख्स को अब क्या कहा जाएगा, राइट। ये शख्स जो है ना ये बस खालिसतन उजुब में मुब्तला है, कुछ नहीं इसके पास, लेकिन ये उजुब में मुब्तला है, ये अपने आप से मोहब्बत करता है, बस ऐसे ही खामखा में मोहब्बत करता है अपने आप से, ठीक है ना। अब ये शख्स जो है ना जो कि उजुब में मुब्तला है ना, इस बंदे की आदत क्या होगी, ये हर अगले बंदे को चैलेंज करेगा, हर अगले बंदे से ये बहस करेगा, राइट। हालांकि बिल्कुल जाहिल है, कुछ नहीं है इसके पास, लेकिन बहस करने की आदत है इसको, तो ये ना बड़े बड़े उलमा से बहस करेगा अपने जहालत के बावजूद। तो ये भी जो है ना ये बहुत बड़ी रूहानी बीमारी है, उजुब की रूहानी बीमारी, ठीक है। और आपको नजर आएगा अगर आप जरा गौर से देखें कि ये उजुब की रूहानी बीमारी भी आपको कुछ खानदानों में नजर आएगी, राइट। बाकायदा आपको ना नजर आएगा इन खानदानों के सारे लोग लगता है उजुब की रूहानी बीमारी में मुब्तला है, ठीक है। क्या गुस्सा भी रूहानी बीमारी है? जी जी, गुस्सा बिल्कुल रूहानी बीमारी है, और अगर आपको नहीं पता था ये बात तो फिर इसको पता करने की जरूरत है, क्योंकि गुस्सा ऐसी रूहानी बीमारी है जो कि जला के राख कर देती है, अगर इसका इलाज ना किया जाए ना तो फिर ये चीजों को जला के राख कर देती है। तो इस वजह से अब आपको समझ में आ गई ये बात, तो अब इसके अगर आपके अंदर ये मसला है तो फिर इसका इलाज कर लें, वरना कल को बहुत बुरी तरीके से पछताना ना पड़ जाए कहीं, क्योंकि गुस्से में इंसान अपनी जुबान से ऐसे बातें कह देता है कि जिसकी वजह से फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो अब तक वैसे साजिद ने समझाया है वो बात समझ में आ गई है, अगर किसी को नहीं कुछ इश्काल हो, कोई सवाल हो तो बिला तकल्लुफ पूछ लीजिए। अच्छा, तो ये लोग जो है ना ये भी तकब्बुर उजोब इस तरह की रूहानी बीमारियों के शिकार थे, तो अब ना फबी अय आला रब्बी का ततमारा, अल्लाह ताला भी इनसे कह रहे हैं कि भाई तुम अपने रब की कौन कौन सी बीमारियों के ऊपर झगड़ा करोगे, मुखालफत करोगे, खामखा की मुखालफत, खामखा का झगड़ा, ठीक है ना। تو حضرت ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خطاب ہر انسان کو ہے کہ سابقہ آیات اور صحف موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام میں آئی ہوئے آیات ربانی میں کوئی ذرا بھی غور و فکر کرے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور تعلیمات کے حق ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور اقوام سابقہ کی ہلاکت و عذاب کے واقعات سن کر مخالفت سے باز آ جانے کا اچھا موقع ملتا ہے، جو حق تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نا یہ ساری باتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں قرآن کے اندر، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، کتنے سارے پیارے پیارے ناموں سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اپنے صفات بیان کر فرماتے ہیں، اپنے حلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اپنے عذاب کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے بارے میں جان لینا، اللہ کو پہچان لینا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بھی رکھی ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے بھی بہت سارے واقعات رکھے ہیں تاکہ ہم اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں۔ اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت میں جھگڑا اور خلاف کرتے رہو گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اکابرین جو فرماتے تھے نا، جیسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ کے سامنے بیان میں بھی تذکرہ کیا تھا، کہ مالٹا کی نظر بند سے جب واپس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے اتنے سال اس بات پہ غور کیا کہ مسلمانوں کے زوال کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ جو ہے وہ قرآن سے دوری ہے اور دوسری وجہ باہمی اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن سے دوری یہ پوری قوم کی زوال کی سب سے پہلی وجہ ہے۔ بھئی کیوں قرآن سے دوری کا کیا مطلب، سارے بچے قاعدہ پڑھنا شروع کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یا بچے جو ہے وہ قرآن کا حفظ کرنا شروع کر دیں تو قرآن سے جڑ گئے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، قرآن سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری باتیں رکھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان بھی سکتے ہیں، اور پھر پہچاننے کے بعد بطور انسان چونکہ ہماری ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں، ہم کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں، تو اگر ہم قرآن سے جڑ کر رکھ کر زندگی گزاریں گے نا، تو ہم نہ صرف حقیقت کو سمجھ لیں گے بلکہ اس حقیقت کی بار بار یاد دہانیاں بھی ہمیں ہوتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے نا، اور یاد دہانیاں کیا ہوتی ہیں، ان سے پھر انسان جو ہے وہ لائن پر رہتا ہے، اپنے مقصد سے پھر غافل نہیں ہوتا، بھول نہیں جاتا اپنے مقصد کو۔ ٹھیک ہے، تو قرآن سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزیں رکھی ہیں، یہ ہمیں پتا ہوں اور ان کی یاد دہانیاں ہمیں ہوتی رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان قرآن کو رکھا ہے، باقی رکھا ہے، صرف بھیجا نہیں کہ بھیجنے کے بعد اس کے بعد واپس لے لیا ہو، بلکہ باقی رکھا ہے ہمارے پاس یہ قرآن نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی نہیں ہے اس دنیا میں، یعنی باقی نہیں ہے اس مراد یہ کہ ہمارے درمیان، یعنی دنیاوی، یعنی ہماری طرح کی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء اللہ تعالیٰ نے باقی رکھے، علماء اور مشائخ، ٹھیک ہے، تو چلیں وہ تو ورثاء کی شکل میں موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن قرآن تو وہی ہے نا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا، جو صحابہ پڑھا کرتے تھے، وہی قرآن ہمارے پاس بھی موجود ہے، اس کے اندر تو ایک لفظ کا فرق نہیں آیا نا، ایک حرف کا فرق نہیں آیا نا۔ ٹھیک ہے، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اب موجود نہیں ہے تو وہ تو بہت فرق آ گیا اس کے اندر، لیکن قرآن میں تو ایک حرف کا فرق نہیں آیا نا۔ تو اس نعمت کا ہمیں شکر کتنا زیادہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس نعمت کی کتنی زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے، قدر دانی کرنے کی ضرورت ہے اس نعمت کی نا۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، تو فرماتے ہیں کہ، یعنی ترجمہ اس کا بنے گا کہ یہ نذیر ہے، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، ٹھیک ہے، جیسے کہ پچھلے ڈرانے والے گزرے ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ حاضہ کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن کی طرف ہے، کہ یہ بھی پچھلے رسولوں اور پچھلی کتابوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، جو صراط مستقیم اور دین و دنیا کی فلاح پر مشتمل ہدایات لے کر آئے ہیں، اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के जो बेसत के मकासद हैं उनमें बशीरों व नजीरा, बशारत देने वाले, बशारत किसको देंगे, जो अच्छे काम कर रहा है, ठीक है ना, उसको बशारत देंगे ना। अगर कोई अच्छा काम कर ही नहीं रहा है तो उसको क्या बशारत देंगे भाई, उसको तो डराना पड़ेगा ना कि तुम ये जो गलत काम कर रहे हो इसकी वजह से तुम्हें सजा होने वाली है, तुम इन गलत कामों को छोड़ दो। ठीक है, तो उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो अच्छे काम करने वाले तो लोग नहीं थे ना, ठीक है ना, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से फिर एक एक दो दो करके दाखिल होना शुरू हुए इस्लाम के अंदर। तो इस वजह से जो नबी अलैहिस्सलाम सलाम का अव्वल काम था वो था डराने वाला काम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम कोई नेगेटिव मकसद लेकर के आए थे कि भाई डराना तो बड़ा नेगेटिव काम है ना, ये तो मनफी किस्म का काम है डराना। ठीक है, अच्छी खबरें देना मुसबत काम कहलाता है, बड़ा खुशगवार काम कहलाता है भी अच्छी खबरें देना। ठीक है, लेकिन ऑडियंस के हिसाब से बात की जाती है ना, ऑडियंस सारी की सारी जो है वो मुखालफत करने वाली ऑडियंस है और इनकार करने वाली ऑडियंस है, तो उनको भी बशारत कैसे दी जाए फिर, ठीक है ना, उनको तो डराने का काम किया जाएगा ना। इस वजह से नबी अल्लाह सलाम के लिए बशीर का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन नजीर का जो लफ्ज है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि ना मानने वालों की तादाद जो है वो हमेशा ज्यादा रहती है। ठीक है, और शुरू में तो वैसे ही वो खाली ना मानने वाले लोग होते हैं, तो इस वजह से नजीर और नुजर का लफ्ज जो है वो ज्यादा आपको नजर आएगा। अज़िफतिल आज़िफा लैस लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, तो अज़िफा बमानी क़ुर्ब क्या आता है, तो अज़िफतिल आज़िफा करीब हो गई, करीब होने वाली चीज। ठीक है, कौन सी करीब होने वाली चीज, कयामत। ठीक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने से, तशरीफ लाना जो है ये कुर्ब कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो सूरतों को रखा है ना, ये सूरतों की तरतीब भी बाकायदा यानी एक एक वजह के साथ है कि फलानी सूरत के बाद जो दूसरी सूरत आती है वो क्यों ये वाली सूरत आती है, तो बाकायदा उलमा ने इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं कि कुरान में जो सूरतों की तरतीब है उसके पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमतें हैं। तो एक हिकमत हमें सामने नजर आ रही है कि यहां पर अज़िफतिल आज़िफा करीब आ गई, करीब आने वाली चीज है ना, तो अब ये सूरत खत्म होने वाली है सूरह नजम, यहां पर अल्लाह ताला ने आज़िफा का जिक्र किया, तो इसके फौरन बाद कौन सी सूरत रखी, जो कि इंशाल्लाह हम भी इसके बाद पढ़ेंगे, सूरह कमर। और सूरह कमर के अंदर क्या है, इक़्तरबत अस्सा, ये कयामत की घड़ी करीब आ गई। ठीक है, तो यहां से गोया कि ना ये चेन बन रही है अगली सूरत सूरह कमर की, कि उसके अंदर भी फिर नबी अलैहि सलाम की बेसत के साथ कयामत के करीब आ जाने का तस्करा है। ठीक है, तो लैसा लहा, नहीं है इसके अंदर अल्लाह के सिवा काशिफा, नहीं है इसके लिए अल्लाह ताला के सिवा कोई हटाने वाला, यानी कयामत की जो घड़ी है ये किसी के बस में नहीं है कि इसको पोस्टपोन किया जा सके, सिर्फ अल्लाह ही के बस में है। तो अल्लाह ताला कयामत को पोस्टपोन करते हैं, कैसे करते हैं भाई, कयामत को पोस्टपोन करते हैं अल्लाह ताला, कोई आप में से बताए तो बहुत खुशी होगी, अल्लाह ताला कयामत को पोस्टपोन करते हैं, पोस्टपोन का मतलब डिले करना, मौखर करना। तो क्या मतलब है इस बात का, या कोई दलील है किसी को याद कि अल्लाह ताला पोस्टपोन कयामत को कैसे करते हैं या क्यों करते हैं? जब तक यह आजिज पढ़ता है, आप में से अगर किसी के जहन में आता है इसका जवाब तो लिखिएगा। अज़िफा बमानी क़ुर्ब आता है, मानी ये है कि करीब आने वाली चीज करीब आ पहुंची, जिसको खुदा ताला के सिवा कोई हटाने वाला नहीं है, मुराद इससे कयामत है, उसका करीब आ पहुंचना सारी दुनिया की उम्र के एतबार से है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बिल्कुल आखिर में कयामत के करीब है। यानी अगर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने तक का अरसा कैलकुलेट करें ना, जो अहादीस से पता लगता है, सीरत से पता लगता है, वो तकरीबन 4000 साल का बनेगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। ठीक है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आप मजीद अगर पीछे चले जाए तो वो पता नहीं कितने हजार साल बनेगा, काफी लंबे लंबे अरसे हैं ये। ठीक है, लंबे लंबे यानी टाइम लैप्सेस हैं इन नबियों के दरमियान, ठीक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के आ जाने के बाद आगे कितना टाइम है, वो 1400 साल गुजर चुके हैं। और अगर आप कनाइन से कैलकुलेशन करें, हिसाब वगैरह लगाएं, तो लगता है ऐसा है कि अब बस चंद सौ साल रह गए खाली, तकरीबन 150 साल, 200 साल, है ना। और बाकी जितनी अब अलामात कुबरा रहती हैं आनी, अलामात सुबरा तो बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं, अलामात कुबरा जो 10 हैं टोटल, तो वो अभी शुरू नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं किस वक्त शुरू हो जाएंगी अलामात कुबरा भी आना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो दज्जाल, इमाम मेहदी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका वाक़या रूनुमा हो जाएगा, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाएगा 50 साल के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद दुनिया फिर से तनज़ुली की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो मशायख फरमाते हैं कि ये जो टोटल पीरियड है ना, ये कोई 150-200 साल तक का है, बस उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अब नबी अलैहिस्सलाम से क़यामत कितनी दूर है, मैक्सिमम 1700-1800 साल बस। लेकिन पीछे दुनिया की कितनी उम्र है, 5000 साल, 6000 साल, 7000 साल, है ना। तो अब 7000-8000 साल के मुकाबले में 1700-1800 साल तो बहुत ज्यादा नहीं है ना, बहुत ही थोड़े से है ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इन साइंसदानों की तरफ अगर निकल जाएं, साइंसदानों की तरफ, तो उनके हिसाब से तो वो तो मिलियन से कम की बात ही नहीं करते। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो डायनासोर्स यूज्ड टू लिव ऑन द अर्थ, है ना। हमारे हमें तो नहीं समझ में आता ये मिलियंस ऑफ इयर्स वगैरह वाली बात, ये तो अपनी तरफ से बोलते रहते हैं। जो उन पर एतमाद करता है तो उनकी बात मान लिया करें, ठीक है ना। हम तो उनकी बात नहीं मानते भाई, सीधी सी बात है, यानी इनकी हर बात नहीं मानते, जिस बात के कुछ अकल बनती हो तो उसकी बात मान लेते हैं। हर चीज़ को थोड़ी मानना जरूरी होती है, कोई साइंसदान है तो आप उसकी हर चीज़ मान लो, कोई नबी है अल्लाह का क्या वो जिसकी हर बात मानना जरूरी है, ठीक है। तो किसी के ध्यान में आया कि अल्लाह ताला जो क़यामत को मुअख्खर करते हैं, इससे क्या मुराद है। यहाँ पे फरमाया ना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई क़यामत को हटाने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कोई ये भी कह सकता है कि भाई क़यामत को अल्लाह ताला हटाएंगे ही नहीं, क़यामत तो जब आनी है वो आएगी। हाँ बेशक, जो तकदीर में लिखा हुआ है तो उस वक्त तो क़यामत आएगी, जैसे हर चीज़ होती है, किसी की मौत लिखी हुई होती है तो वो मौत तो आनी होती है वक्त के ऊपर। लेकिन क्या अल्लाह ताला मौत को मौखर करते हैं किसी वजह से, करते तो हैं ना, बहुत सारी रीजन बनते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो दुआओं की वजह से ज़िंदगी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो अब कैसे लंबी हो जाती है भाई, कोई वजह होती है तभी लंबी होती है ना। तो क़यामत को मौखर करने की क्या शक्ल बनती है, जिस तरह किसी को किसी की मौत करीब नजर आती है फिर अल्लाह उसको ज़िंदगी दे देते हैं, नहीं हो वही तो पूछ रहे हैं क्यों कैसे। तो क़यामत के बारे में ये है, जो कि हदीस मुबारक से पता चलता है और हमने अपने मशायख से सुना, बारहा इसको सुना, कि जब कोई बंदा, कोई एक बंदा भी ना दुनिया के अंदर अल्लाह का नाम लेता है, ठीक है, तो अल्लाह ताला क़यामत को 40 साल आगे कर देते हैं, 40 साल आगे कर देते हैं, ठीक है। आखिरी बंदा जब इस दुनिया के अंदर अल्लाह का नाम लेगा और उसके बाद कोई नहीं लेगा अल्लाह का नाम, तो उस वक्त के 40 साल के बाद क़यामत आ जाएगी, ठीक है। आखिरी दफा जब अल्लाह का नाम लिया जाएगा ना इस दुनिया में, उसके 40 साल के बाद क़यामत आ जाएगी। लेकिन जब तक अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, ये क़यामत जो है ना, ये गोया के 40 साल परे रहेगी दुनिया से। आज किसी ने अल्लाह का नाम लिया, या मतलब जो इंसान ले रहे हैं माशाल्लाह सारे, ये नहीं कि हर बंदा लेगा तो आगे 40 साल मजीद, तो फिर तो यानी फिर करोड़ों साल आगे हो जाएगी क़यामत, है ना। क्योंकि हर 10 लाख इंसान अगर अल्लाह का नाम ले रहे हैं, 10 लाख मुसलमान भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तो फिर तो 40 × 10 10 लाख तो कितने बनते हैं भाई, ठीक है। नहीं, ये तो समझ में नहीं आती बात, लेकिन इतनी तो समझ में आती है ना कि भाई आज अगर लोग अल्लाह का नाम ले रहे हैं ना, तो क़यामत जो है ना वो 40 साल दूर है। फिर कल अल्लाह ताला का नाम लेंगे तो फिर क़यामत कल से 40 साल दूर, फिर परसों लेंगे तो परसों से 40 साल दूर, ठीक है। तो इस तरीके से आखिरी दफा जब अल्लाह का नाम लिया जाएगा तो उसके 40 साल के बाद क़यामत आ जाएगी, ठीक है। तो ये परे करने वाला कॉन्सेप्ट इस हदीस की रोशनी में फिर समझ में आता है। अच्छा, बाकी ये कि जो तकदीर, क्या कहते हैं उसको, تقدیر معلق اور تقدیر کیا ہے وہ تقدیر جو تبدیل نہیں ہوتی یا 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 علم ازلی اس کو کہتے ہیں کیا لفظ ہے مبرم جزاکم اللہ تقدیر مبرم تو اس کے اندر تو جو چیزیں طے ہیں وہ تو طے ہیں نا وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے کہ بس آخری بندہ اللہ کا نام کب لے گا یہ بھی اللہ کو پتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کے 40 سال کے بعد قیامت کا ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے وہ تقدیر مبرم کے اندر ہے وہ نہیں تبدیل ہونے والا کسی چیز سے بھی ٹھیک ہے نا یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ کس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے یہ تقدیر معلق کے اندر تبدیلی آ رہی ہے کہ ایک بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اللہ 40 سال آگے کر دیتے ہیں یہ تقدیر معلق کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہرحال جس کو تقدیر کا کانسیپٹ ہے تھوڑا سا اس کو سمجھ میں آ گئی ہوگی باقی آگے چلیں افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون ٹھیک ہے ھذا الحدیث سے یہاں پہ مراد قرآن کریم ہے حدیث اصل میں کسی بھی نئی بات کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگرچہ کہ ٹرمینالوجی میں حدیث نبی علیہ السلام کی بات کو کہتے ہیں اور قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر حدیث کا جو لفظ ہے نا وہ اس کے لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے کہ یہ حدیث یعنی قرآن مجید تو معنی آیت کے یہ ہیں کہ قرآن کریم جیسا کلام الہی جو خود ایک معجزہ ہے تمہارے سامنے آ چکا کیا اس پر بھی تم تعجب کرتے ہو اور اس بطور استہزاء کے ہنستے ہو یعنی قرآن کو سن کر کے کوئی ہنسے تو وہ اس لیے بھی ہنس سکتا ہے کہ قرآن میں جو نیکوں کو بشارت دی گئی ہے تو وہ اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے کہ ہاں بھی نیکوں کو بشارت دی گئی ہے میں بھی نیکی کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تو مجھے بھی یہ بشارت مل جائے گی تو اس کے اوپر بھی کوئی ہنس سکتا ہے لیکن یہ لوگ جو ہنستے تھے وہ بشارت سے خوش ہو کر کے نہیں ہنستے تھے بلکہ یہ مذاق اڑانے کی نیت سے ہنس رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے اور اپنی معصیت یا عمل میں کوتاہی پر روتے نہیں یعنی تم استہزاء کے طور پر ہنستے ہو اور تمہیں رونا نہیں آتا یہ ساری باتیں سن کر کے کیونکہ تم تو گناہوں کے اندر مبتلا ہو وانتم سامدون ٹھیک ہے اور تم سامدون ہو تو سامدون کا کیا مطلب تو فرماتے ہیں کہ سمودن کے لغوی معنی غفلت و بے فکری کے ہیں اور سامدون بمعنی غافلون ہے ٹھیک ہے یعنی تم غفلت میں پڑے ہو اور ایک معنی سمودن کے گانے بجانے کے بھی آتے ہیں وہ بھی اس جگہ مراد ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ظاہر گانے بجانے والا کام کون کرتا ہے جو کہ غافل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر کسی کو سامنے موت نظر آ رہی ہو یا اگر کسی کو جو ہے نا وہ یعنی آگے کوئی بہت بڑی مشکل کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہو تو پھر گانے بجانے کا تو اس کو دل نہیں چاہتا نا تو گانے بجانے کا تو وہی کام کرے گا کہ جو کہ غفلت میں مبتلا ہو غافل ہو فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا بس تم سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کرو یہ آیت سجدہ ہے تو جس نے بھی سنا ہے تو اس کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو نماز نہیں پڑھ رہے تو جب پڑھنا شروع کریں گے تو پھر اس وقت یہ سجدہ تلاوت کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں کہ یعنی پچھلی آیات جو غور کرنے والے انسان کو عبرت و موعظت کا سبق دیتی ہیں اس کا مقتضا یہ ہے کہ تم سب اللہ کے سامنے خشوع و تواضع کے ساتھ جھکو اور سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو وعبدو اسی کی عبادت کرو اچھا صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ سورہ نجم کی اس آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب مسلمانوں اور مشرکوں نے اور تمام جن و انس نے سجدہ کیا یعنی اتنی پاورفل یہ آیت سجدہ ہے کہ اس کے اوپر ساری مخلوقات جو کہ ذوی العقول کہلاتی ہیں عقل والی ٹھیک ہے نا جن میں جن بھی شامل ہیں اور مسلم اور انسان بھی شامل ہیں ٹھیک ہے یعنی انسانوں میں تو جو وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے سنی ٹھیک ہے نا یہ آیت اور جو جن وہاں پہ موجود تھے وہ بھی جن بھی چھپ کر کے قرآن سنا کرتے تھے نا تو انہوں نے بھی وہاں پہ سجدہ کیا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ جو انسان وہاں موجود تھے موجود نہیں تھے ان انسانوں نے بھی سجدہ کیا ٹھیک ہے یہ مراد نہیں ہے کیونکہ ایسا نہیں ہوا تھا نا کہ بھائی इंडिया के लोगों ने भी सजदा किया और अमरीका तो खैर उस वक्त था नहीं, अफ्रीका के लोगों ने भी सजदा किया और यूरोप के लोगों ने भी सजदा किया, ये तो मुराद नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है। तो मौजूद जिन और मौजूद इंसानों ने सजदा किया। और बुखारी और मुस्लिम ही की दूसरी हदीस में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम की तिलावत फरमाई और इसमें सजदाए तिलावत अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सब हाजिरीन मजलिस मोमिनीन व मुशरिकीन ने सजदा किया बजुज एक कुरैशी बूढ़े के जिसने जमीन से एक मुट्ठी खाक उठाकर पेशानी से लगा ली और कहा कि मुझे यही काफी है, यानी मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा, बस जमीन की मिट्टी उठाकर, यानी गोया के अलामती सजदा उसने भी किया लेकिन अपने सर को झुकाना अल्लाह ताला ये चाहते हैं, ये नहीं कि जमीन को उठा के अपने सर से लगा लो बल्कि अपने सर को जमीन के ऊपर यानी टेको, ठीक है। ऐसा क्यों है भाई, अपने सर को जमीन पर टेकना या जमीन को सर पर टेकना, इन दोनों में क्या फर्क है? तो एक अजीब यानी इंकशाफ जो मॉडर्न साइंस ने किया, ठीक है ना, एक अजीब इंकशाफ जो मॉडर्न साइंस ने किया, जिस चीज के बारे में हमारे मशायख पहले से फरमाते थे बहुत पहले से, वो क्या है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान की पेशानी बनाई है ना, इस पेशानी की तरफ जो दिमाग का हिस्सा लगता है, पेशानी की तरफ जो दिमाग का हिस्सा लगता है ना, ठीक है, दिमाग तो पूरे पूरे सर के अंदर है ना, ठीक है, तो दिमाग के उस हिस्से में जो कि पेशानी की तरफ है वहां पर इंसान की रूह का लतीफा नफ्स होता है, इंसानी रूह का लतीफा नफ्स होता है, यानी पेशानी के तरफ, ठीक है। तो जब इंसान अपनी पेशानी को जमीन पर टेक रहा होता है ना, दरअसल वो अलामती तौर पर ही सही लेकिन अपने नफ्स को झुका रहा होता है, ठीक है ना, अपने अपने नफ्स को अपने रब के सामने झुका रहा होता है, क्योंकि तो क़िबले की डायरेक्शन में हम सजदा कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो अब अगर कोई कहे कि नहीं मैं अपने सर को नीचे नहीं झुकाऊंगा बल्कि जमीन के कोई टुकड़ा उठा करके अपने सर पे लगा लूंगा सजदा करने के लिए, तो इससे क्या होगा, इससे उसका नफ्स तो झुकेगा नहीं ना, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इतना ही काफी है वैसे तो, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा और इसकी हिकमत भी समझना चाहें तो इसकी हिकमत ही समझ में आती है कि नफ्स को तो नीचे झुकाने वाला काम इसने नहीं किया ना, तो अब क्या फायदा भाई, ठीक है। चले तो फरमाया क्या था अब्दुल्ला, अच्छा तो इसने ना एक मुट्ठी खाक उठाकर पेशानी से लगा ली और कहा कि मुझे यही काफी है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि फिर मैंने उस शख्स को हालत कुफर में मकतूल पड़ा हुआ देखा है, यानी इसको फिर मुसलमान होने की तौफीक नहीं मिली। इसमें इशारा इसी तरफ है कि इस वक्त आदर सल्लम के इतबा में मुसलमानों को तो सजदा करना था ही, जो मुशरिकीन उस वक्त हाजिर थे अल्लाह ताला ने उन पर भी कुछ ऐसी हालत गालिब कर दी कि सब सजदा करने पर मजबूर हो गए। यानी जो मुशरिकीन ने वहां पर सजदा किया ना, ये जबरी सजदा था, ये इख्तियारी सजदा नहीं था, यानी अल्लाह होता है ना कि भाई अल्लाह ताला किसी के ऊपर कुछ गशी तारी कर दें, कुछ कैफियत तारी कर दें कि ना चाहते हुए भी वो ये काम कर ले, ठीक है, तो इसके ऊपर उसको सवाब तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सवाब तो मिलता है इख्तियारी नेकी के ऊपर, जो इंसान अपनी चॉइस से अपने अकल के साथ नियत के साथ जो काम करता है उसके ऊपर उसको उसको सवाब मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया तो इस वजह से इनको सवाब तो नहीं मिला उस वक्त ये सजदा करने से, लेकिन अल्लाह ताला ने इसी को बहाना बना करके इनको बाद में ईमान की तौफीक दे दी, ठीक है, जबकि वो शख्स जिसने कि उस वक्त सजदा नहीं किया उसको ईमान की तौफीक नहीं मिली, ठीक है। जो मुशरिकीन उस वक्त हाजिर थे अल्लाह ताला ने उन पर भी कुछ ऐसी हालत गालिब कर दी कि सब सजदा करने पर मजबूर हो गए। वो उस वक्त उनका सजदा बवजह कुफर के कुछ सवाब नहीं रखता था, मगर वो भी अपना एक असर ये छोड़ गया कि बाद में उन सबको इस्लाम व ईमान की तौफीक हो गई। सिर्फ एक आदमी कुफर पर मरा जिसने सजदे से गुरेज किया था, ہے نا. اس کی ایک اور مثال ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جب مقابلہ ہوا ہے نا, تو اس وقت جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے ہم یا پہلے آپ, کون ڈالے گا. ٹھیک ہے, تو چونکہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کا ایک ادب مؤدبانہ برتاؤ شو کیا, ٹھیک ہے نا, کہ ان کو انوائٹ کیا کہ جی آپ بتائیں یا آپ کر لیں پہلے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو نا پھر مشائخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ادب کو ان کی ہدایت کی وجہ بنا دیا. ٹھیک ہے, کہ جب یہ مقابلہ مکمل ہوا تو سارے کے سارے جادوگر جو تھے وہ ایمان لے آئے, ہے نا. اب اتنی جلدی سے ان کو ایمان کی توفیق مل گئی تو کوئی نہ کوئی تو وجہ بنتی ہے نا, تو اس کے اوپر پھر مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کے اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی. ٹھیک ہے, تو ادب جو ہے نا یہ کام آ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی ادب سکھانا چاہیے. اچھا, صحیح ہے کہ ایک حدیث میں جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے, یہ مذکور ہے کہ انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پوری پڑھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو ایک حدیث موجود ہے اور وہ ہے بھی صحیح ہے, یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی, تو بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہیں کیا, تو فرماتے ہیں کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سجدہ واجب یا لازم نہیں ہے, کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باوضو نہ ہوں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ سجدہ تلاوت کے لیے حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا لازمی ہے, یعنی حالت جنابت میں سجدہ نہیں کر سکتے, حالت حیض میں, حالت نفاس میں سجدہ نہیں کر سکتے, سجدہ تلاوت نہیں ادا ہوگا. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے اگر کوئی وضو کی حالت میں نہیں ہے تو وہ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے. ویسے تو آپ جتنے چاہیں سجدے کر سکتے ہیں, لیکن سجدہ تلاوت بغیر وضو کے ادا نہیں ہو سکتا. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ اس وقت حالت وضو میں نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی دوسرا عذر سجدہ کرنے سے مانے ہو, ایسی حالت میں فوری سجدہ کرنا ضروری نہیں, بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی عالم. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر کوئی خواتین ہیں جو سن رہی تھیں یہ آیت سجدہ, تو اگر وہ ابھی نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ بعد میں سجدہ تلاوت کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی سوال اگر ہے تو ابھی پوچھ لیں, ورنہ آج کی کلاس ہم ختم کر کے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر سورۃ القمر شروع کریں گے. نہیں کوئی سوال تو کلاس ختم کر دیں. اگر ہے, اگر کسی کو اور لکھ رہی ہیں تو ریز ہینڈ کا ایک بٹن ہوتا ہے, اس کو کلک کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ جی مجھے ایک سوال ہے, تو پھر ہم اس کا انتظار کریں گے تو آپ لکھیں. ٹھیک ہے, ریز ہینڈ کا مقصد یہی ہے کہ آپ بتا دیں پہلے سے, جیسے کلاس روم میں ہوتا ہے نا کہ کسی بچے نے سوال کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, پھر ٹیچر ان سے پوچھتے ہیں تو پھر وہ سوال کرتے ہیں, تو اسی وجہ سے انہوں نے یہاں پر ریز ہینڈ کا بٹن باقاعدہ رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ کسی نے کلک نہیں کیا ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو سوال نہیں ہے تو کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.